नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, परियोजना से दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ डीएनडी फरीदाबाद सोहना हवाई परियोजना का हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राजधानी में जाम की समस्या कम होगी और दिल्ली की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। उन्होंने राजमार्ग निर्माण में लाखों टन शहरी कचरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए श्री गडकरी का भी धन्यवाद दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से दिल्ली को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
केंद्र की डबल इंजन सरकार ने मिलकर के जो एग्जाम्पल सेट करना होता है, दिल्ली आज उसका सर्वोच्च फायदा उठा रही है। और मैं तो माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगी कि आपने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए लाखों टन हमारा जो वेस्ट था वो आपने इन सड़कों के, इन हाईवेज के बनाने में उसका इस्तेमाल किया, जिसका सीधा सीधा लाभ हमारे दिल्ली शहर को हुआ। इस पूरे फ्यूचर रेडी ट्रांसफॉर्मेशन से दिल्ली बहुत सुंदर बनने वाली है।
श्री गडकरी ने कहा कि ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी।
नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशियंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा।
राष्ट्रीय राजधानी को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित बनाने की दिशा में अग्रसर दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के सम्मानजनक पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र शुरू करने जा रही है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अलग अलग जगहों पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर नागरिक अपनी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को सम्मानपूर्वक जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन मूर्तियों को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुनर्चक्रण कर उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसके माध्यम से लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विषय पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है और साथ ही नागरिकों से सुझाव भी आमंत्रित कर रही है। इसमें लोगों से यह पूछा गया है कि संग्रह केंद्र कहाँ बनाए जाने चाहिए तथा इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर और गरिमापूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
वर्षों जिन मूर्तियों को हम अपने पूजा घर में भगवान के रूप में पूजते हैं, संभालते हैं, जब वो खंडित हो जाती है तो छोड़ आते हैं, कभी पीपल के नीचे रखाते हैं तो कभी नदी में फेंकाते हैं, कभी सड़क किनारे, कभी पार्क के किनारे। दिल्ली सरकार की ओर से मैं करने जा रही हूँ इन खंडित मूर्तियों का कलेक्शन सेंटर। अलग अलग जगह ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे हमारी खंडित मूर्तियों को हम दे सकें, बाद में जिन्हें रिसाइकिल कर फिर से उनको किसी यूटिलिटी की चीज में कन्वर्ट किया जाए।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि लोगों के सुझावों के आधार पर ही दिल्ली सरकार एक विस्तृत योजना तैयार करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मिशन अब केवल सफाई अभियान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जो एक टिकाऊ, सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत को आकार दे रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। श्री सूद ने कहा कि बैठक में स्वच्छता, सतत शहरी विकास और बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने भारत की बढ़ते व्यापार व्यवस्था को समर्थन देने, संपर्क को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और निर्बाध आवाजाही मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में परिधान, निर्मित वस्त्र और गृह सज्जा क्षेत्र कौशल परिषद के अध्यक्ष प्रेमल उदानी से भी मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र कौशल विकास के उपायों को मजबूत करना, कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना और उद्योग की क्षमता के उपयोग में सुधार लाना था। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और श्रमिकों को सहायता देने वाले तंत्र के लिए सहयोगात्मक मॉडलों पर भी विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत 16 मई से 14 जून तक घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जाकर जरूरी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोगों से आग्रह किया कि अधिकारियों का सहयोग करें और सही जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भागीदारी करके नागरिक विकसित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के तहत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बैठकें करने के निर्देश दिए गए ताकि परीक्षा की व्यवस्थाओं की मजबूत निगरानी और प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कोर्ट की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कोर्ट ने वर्तमान और भविष्य के शैक्षणिक महत्व के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे उभरते क्षेत्रों में किए जा रहे उपायों की सराहना की। इसके साथ ही श्री संधू ने विश्वविद्यालय को एक ऐसा स्टार्टअप और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम विकसित करने की सलाह दी जो व्यवहारिक, वित्तीय रूप से सक्षम और लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हो। उपराज्यपाल ने संस्थान से ये भी आग्रह किया कि वे दिल्ली की गंभीर चुनौतियों जैसे वायु प्रदूषण, ऊर्जा संक्रमण, सीवेज प्रबंधन और यातायात जाम के लिए विशिष्ट और किफायती समाधान विकसित करने के उद्देश्य से अनुसंधान और नवाचार को तेज करें। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
उपराज्यपाल ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक के दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें औद्योगिक विकास, व्यापार संवर्धन, द्वारका में निवेश के अवसर और दिल्ली में कारोबार करने की सुगमता को मजबूत करने के उपाय शामिल रहे। श्री संधू ने आर्थिक विकास को गति देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के संबंध में श्री गोयल के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एरो सिटी स्थित वर्ल्ड मार्क 4 परिसर का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार नई तकनीकों और हरित अवसंरचना मॉडल को समझने तथा अपनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि इस परिसर में हाई इफिशियंसी डिजाइन और कार्बन ऑफसेट्स के जरिए शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल किया जा रहा है। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना को बढ़ावा देना जरूरी है जहां प्रदूषण कम हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सरकार और दिल्ली परिवहन निगम की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड सिर्फ मुफ्त यात्रा की एक सुविधा ही नहीं है, बल्कि ये महिलाओं को एक गरिमापूर्ण, सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने का एक जरिया बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिंक कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय राजधानी भर में आवासीय कॉलोनियों और सरकारी दफ्तरों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के लिए इन कार्डों के लिए रजिस्ट्रेशन करना आसान हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि इस योजना ने महिलाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया है और उन्हें सार्वजनिक बस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे यात्रा का माहौल ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बन गया है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं लवली निगम।
आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। इस पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड पहल के तहत विकसित किया है। इस अवसर पर श्री जाधव ने कहा कि आयुष ग्रिड सरकार की दूरदर्शी डिजिटल पहल है। इस प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य अनुदान प्रबंधन प्रक्रिया में शत प्रतिशत पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नगर निगम मुख्यालय से 8 ट्रक माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को झंडी दिखाकर निगम के बेड़े में शामिल किया। श्री वाही ने कहा कि इन मशीनों को भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पहल के अंतर्गत खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनें राजधानी की सड़कों पर धूल प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11 मंत्रालयों के सचिवों, महारजिस्ट्रार कार्यालय, जनगणना आयुक्त और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने संबंधी दूसरा परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
आयोग ने कहा है कि सितंबर 2023 में जारी पहले परामर्श पर संबंधित अधिकारियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। आयोग ने लगातार प्रयासों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली उभरती चुनौतियों की पहचान की है। आयोग ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित परामर्श जारी किया गया है। इनमें राष्ट्रीय डेटा प्रणालियों में जेंडर आधारित विविधता को शामिल करना, जेंडर समावेशिता सुनिश्चित करने संबंधी कानूनों की समीक्षा, समावेशी कानूनी ढांचा तैयार करना, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल और कार्यस्थल पर समावेशिता शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
भारतीय रेलवे ने विद्युत लोको शेड गाजियाबाद में पहले 300 लोकोमोटिव पर कवच प्रणाली की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस क्रम में शेड द्वारा सबसे तेज 100वां लोको कवच, 200वां लोको कवच और 300वां लोको कवच को पूरा किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों से संबद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रवर्तन कार्यबल ने आज एक बैठक के दौरान कार्रवाइयों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि पिछले 12 दिनों में 125 निरीक्षण किए गए। राजधानी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ DND फरीदाबाद सोहना हाईवे परियोजना का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं के पुनर्चक्रण के लिए संग्रह केंद्र की शुरुआत करेगी। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर सूचीकरण अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में NEET UG की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और दिल्ली सरकार ने कहा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।